हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को उच्चारण करते समय आपको सोचना है यही कि हे भगवान, मैं मेरा जीवन आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। इसी भाव से आपको इस मंत्र को बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अभी सब लोग राधा रानी का मंत्र में जो मैं पुकारूंगा बड़े ध्यान से प्रेम से पुकारिए। तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस जगह पर जब आप एक नाम पुकारते हो तो उसको हजार बार राधा रानी सुनती है। ये इस जगह का महात्म्य है। बम्बई में एक बार पुकारेंगे तो एक ही बार सुनेंगे, यहां पर एक बार पुकारेंगे तो हजार बार सुनेंगे। इसलिए यहां पर पुकारने में संकोच नहीं करना चाहिए, हृदय से पुकारना चाहिए, क्योंकि सुनने के लिए महारानी बैठी है, सबकी पुकार सुनती है, बड़ी करुणामयी है, सरल हृदय की है, सबके अंदर केवल सद्गुण ही देखती है, अच्छाई देखती है। हमारे अंदर जो भी दोषों के सागर है उसमें से भी ढूंढ ढूंढ के जो अच्छा गुण है वो दिखते हैं, यही देखते हैं कि आप उनके पास आए हैं। गुरु महाराज भी ऐसे होते हैं, हमारे अंदर दोषों का सागर होते हुए भी वो केवल जो एक चिंगारी है भक्ति की उसी को देखते हैं, उसी को हवा देते रहते हैं बस। जो जानते हैं चिंगारी को हवा देंगे तो एक दिन उसकी अग्नि बनेगी, सारे दोष जल जाएंगे उस अग्नि के अंदर। तो ये भक्ति का जीवन ऐसा ही है। एक मार्ग है बीमारियों को दूर करना और एक मार्ग है ऐसा कार्य करना कि बीमारी हो ही नहीं, बीमारी उत्पन्न ही ना हो, वो कार्य भक्ति का है। बाकी सारे कार्य जो करते हैं हम, कर्म कांड करते हैं, तीर्थ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हवन करते हैं, मन्नत मांगते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, इनका अधिक से अधिक लाभ होता है कि अपने जो बुरे कर्म के बुरे फल हैं वो हम टाल सकते हैं। लेकिन बुरे कर्म बनते कैसे हैं? बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति से बनते हैं। प्रवृत्ति जो है, थोड़ा सा माइक्रोफोन को जरा उसे घुमाओ, उधर रखो उस तरफ, हाँ हरे कृष्णा, ठीक है, उधर नहीं उधर, हाँ बस। तो बुरे कर्म करने की जो प्रवृत्ति है वो सभी का जड़ है। भौतिक संसार में आने की भी जो कारण है वो भी यही है कि हमको भगवान से अलग होकर भोग भोगना है, इसलिए हमको यहां भेजा गया है शरीर के साथ, ताकि इंद्रियों के माध्यम से हम थोड़ा भोग लेने का प्रयास कर सकते हैं। और जब हम कार्य करते हैं तो पहले शुरू कहां से होता है? विचार से होता है। इज इट ट्रू? आपको जलेबी खानी है तो पहले मन में विचार आता ना कि जलेबी खानी है, फिर आप किसी से बोलेंगे कि मुझे जलेबी खानी है, कहां मिलती है? मतलब आप जो विचार करेंगे पहले आप में वाचा में आएगा, आप बोलेंगे उसको, किसी के साथ बात करेंगे, आपको जाना है बरसाना तो आप बोलेंगे कहां जाना है, कब जाना है, कभी है कैंप, कभी यात्रा है, तो पहले विचार करेंगे फिर बोलेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? कार्य करेंगे, उसके अनुसार पता करेंगे, पूछेंगे और जलेबी के दुकान में जाएंगे, फिर जलेबी खाएंगे, फिर अच्छी लगी तो दोबारा जाएंगे, तीन बार जाएंगे, चार बार जाएंगे, फिर वो कार्य जो किया उसकी आदत बन जाएगी, और ऐसे आदत बनाए रखेंगे तो वो हमारा चरित्र बन जाएगा, हमारा कैरेक्टर बन जाएगा। शुरुआत कहाँ से हुई? विचार से हुई। तो हमारे जीवन का जो कर्म बंधन है वो विचारों से आरंभ होता है, और वो विचार जो है जब तक वो सही रास्ते में होने की ट्रेनिंग नहीं मिलती है तब तक हमारा कर्म बंधन और यहां फंसे रहना चालू रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी जठरा शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार जीना, बुढ़ापा, बीमारी, मर जाना, फिर दोबारा माता के गर्भ में आके रहना अंधकार में, ये हमारे जीवन का एक्चुअली मूल फॉर्मूला है। छूटना है हमको इससे, इससे छूटना है तो पहले हमारी प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा, और ये प्रवृत्ति बदलने का अगर आपको कोशिश करना है तो दान पुण्य करने से ये नष्ट नहीं होती है। जैसे आपने पेड़ को काट दिया, जमीन जमीन समतल कर दिया उसको, कुछ देर बाद में फिर पौधा आता है उसमें से, क्यों? क्योंकि जड़ जो है, रूट, वो अभी उसके अंदर है ना, जमीन के अंदर, वो कहाँ निकाला है आपने? जब तक रूट नहीं निकाल सकते हैं तब तक वो पाप का जो बीज है, पाप प्रवृत्ति का, पाप कार्य करने का, वो बना रहता है अंदर। और पाप का मतलब ये नहीं कि खून करना, खराबा करना, व्यभिचार करना, नशा करना, ये तो बाह्य स्वरूप पाप का है। पाप का मतलब भगवान को छोड़कर किसी भी चीज का भोग लेने का प्रयास करना, भगवान को भूलकर संसार में आनंद लेने का प्रयास करना, सुख भोगने का प्रयास करना, इसको पाप कहते हैं। पाप की सही व्याख्या है। हम बोले हम पाप तो नहीं करते, हम कितने अच्छे लोग हैं, हम तो अच्छी तरह से ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन जब तक अपना आनंद सोचकर करते हैं तो वो हमको कर्म बंधन में फंसा देता है। जब हम उनके लिए कार्य करते हैं तो कर्म का बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। हमारे लिए कार्य करते हैं, अच्छा भी कार्य करेंगे, सात्विक कार्य करेंगे, लेकिन उसका सात्विक फल भोगने के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा। सात्विक कर्म भी हो, पाप कर्म भी हो, दोनों कर्म हमारे लिए बंधन कारक है। सोने की जंजीर हो या लोहे की हो, दोनों बांध देती है ना। सोने की जंजीर से बंधा हुआ आदमी गर्व नहीं कर सकता, देखो मैं कितना बढ़िया हूं, मेरे को सोने की जंजीर से बांधा गया है, लेकिन जंजीर जंजीर ही होती है, वो सोने की हो या लोहे की हो, वो आपको बांधे रखती है, इसलिए कोई गर्व करने की बात नहीं उसके ऊपर। इसलिए हमको समझना चाहिए कि भगवान का नाम ऐसी एक ही शक्ति है जो पाप के बीज को पाप के प्रवृत्ति को और पाप के करने को सबको नष्ट कर देते हो, तब जाकर हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में उस जप करने वाले व्यक्ति की पूजा करना का तैयारी करना आरंभ कर देते हैं। क्यों? तो ब्रह्मलोक में बैठे हैं, क्या जरूरत है पूजा करने की? क्योंकि वो जानते हैं जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है एक ना एक दिन तो भगवान के धाम में जाएगा, तो मेरे धाम से होते हुए जाएगा ना, रस्ते में आता है ब्रह्मलोक। इसलिए वो सोचा कि जब जाएगा यहां से तो जाते जाते मैं उसकी आरती उतारूंगा, क्योंकि वो बहुत व्यक्ति गौरवशाली होगा जो भगवान का नाम पुकार के भगवत धाम में जाने के योग्य हो जाएगा। और ये जो प्रिविलेज है, ये जो बेनिफिट है, ये हर एक व्यक्ति के लिए मुमकिन है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, अरे प्रभु जी आप तो बड़े भक्त हो, अरे आप तो बड़े संत हो, ऐसे हम कह सकते हैं, हम तो क्या है नाचीज हैं। ये कहना भी गलत है, क्योंकि पतित से पतित जीव को भी नाम उद्धारण, नाम जप करने से उसका उद्धार हो सकता है। ऐसे वस्तु भगवान ने बनाया, ऐसा मार्ग बनाया, कैसे नहीं कि भाई आप अगर पढ़े लिखे होंगे, शास्त्र में पढ़े लिखे होंगे, ब्राह्मण होंगे, पंडित होंगे, तो ही आपको ये सब मिलेगा, और आपको नहीं मिलेगा आप शूद्र हो, वैश्य हो, ऐसा नहीं है। हर एक जाति के, हर एक वर्ण के, हर एक धर्म के, हर एक स्थिति के, बाल्य अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में, हर अवस्था में जो भी व्यक्ति भगवान के नाम को पुकारता है वो उच्च पद पर प्राप्त कर सकता है अपने आप को। हाँ, हम लोग सुनते ना, जो वाल्या नाम का व्यक्ति था, वाल्या कितनी हत्या करता था, वो वाल्मीकि मुनि बन गए वो उसके, केवल राम नाम जप करते हुए। केवल नाम के जप करने से अजामिल जैसा महाभयंकर पापी जो है वो भगवत धाम चला गया। से कई कथाएं भागवत में आती है नाम के बल की, इतनी शक्ति है नाम में, क्योंकि भगवान स्वयं नाम है उनके, स्वयं उन्होंने अपने आप को नाम में अर्पण कर दिया है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस, सब शक्तियों को अपने नाम में ठोस दिया है। और ये बोला कि तत्रार्पिता न स्मरणिता स्मरणी न कालः, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता न स्मरणे न कालः। कोई समय भी ऐसा पक्का नहीं कि भाई ऐसे ही करना चाहिए, अच्छा है सुबह करेंगे तो, लेकिन दिन भर में कोई भी समय में कर सकते हैं। एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशमिहा जनी न अनुरागः, इतना सब होने पर भी लोगों को उसमें अनुराग नहीं है, रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, मन सब इंद्रियों के भोग की ओर भाग रहा है। इसलिए हमको ये सब हमारा दुर्भाग्य हटाना चाहिए। इस दुर्भाग्य को हटाने के लिए क्या दुर्भाग्य है, नाम के प्रति अभी तक रुचि नहीं है, मुंह से नाम निकलता ही नहीं। ऐसे कहते हैं कि जिसके कंधे पर अनंत पापों का भार होता है उसके मुंह से नाम ही नहीं निकलता भगवान का, और जिसके मुंह से भगवान का नाम निकलता है इसका मतलब उसने पिछले कई जन्मों में जप तप तीर्थ यात्रा दान पुण्य सब कुछ किया हुआ है, उसके फल के स्वरूप ही उसको मुंह से नाम निकलता है। हमारे देखो कितने बच्चे हैं यहाँ पर, जन्म से कितने, वो भी बैठा था, क्या नाम था उसका, श्री राम, देखो कैसी माला लेके जप करता है, साधारण वस्तु नहीं है ये जन्म जन्मांतर का उसका संचित है, जिसकी वजह से वैष्णव घर में जन्म लिया उसने, भक्तों के घर में जन्म लिया है, गर्भ से ही भगवान का नाम सुन रहा है वो, कोई ऐसा बाय चांस लक बाय चांस नहीं है ये, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके भक्तों के गर्भ में जन्म मिलता है, जन्म से संस्कार मिलते हैं, और स्वतः ही हृदय स्फूर्त जो है भक्ति भगवान के चलती रहती है। चलो हमारा जन्म भगवान के समझ, हो सकता है कि वैष्णव के घर में नहीं हुआ, लेकिन जब पता चला तब से हम खुद वैष्णव बन सकते हैं। हाँ, देयर इज नथिंग लाइक डिस्क्वालिफिकेशन, कोई अयोग्यता ऐसी होती नहीं है, कलयुग में किसकी योग्यता है, किसके पास भी योग्यता नहीं है, लेकिन जो भगवान का नाम स्वीकार करता है वो योग्य बन जाता है, तुरंत ही भगवान का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो कलयुग में हम यज्ञ नहीं कर सकते, जप जाप तो ये तपस्या कुछ नहीं कर सकते हम कलयुग में, हमारे पास क्या योग्यता है, कुछ गुण नहीं है, कुछ डिटर्मिनेशन नहीं है, निश्चय नहीं है हमारे पास, कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है, तो करना क्या है फिर, जिस अवस्था में है उस समय भगवान के नाम को पुकारना है। भगवान के नाम के माध्यम से आपको सब क्वालिफिकेशन मिलेगा, आपकी योग्यता भगवान के नाम से बनेगी। इसलिए हमको भगवान के नाम को जप करने में चुकना नहीं चाहिए। और यहाँ की जो भूमि है बरसाना धाम, वृंदावन धाम की, ये बहुत ही भगवत नाम के जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए अनुकूल है। जो संघर्ष और स्ट्रगल हमको बंबई में या और किसी शहर में करना पड़ता है नाम जप करने के लिए, यहाँ पर स्वतः ही जप होता है। हाँ, भक्त लोग कभी तो 12 माला, 17 माला, 18 माला, 20, 25, 60 आए आराम से कर लेते हैं यहाँ पर। उसी को बंबई में कितना मन का संघर्ष होता है, मन का एकाग्रता नहीं होती है, यहाँ वहाँ भागता है मन, टेस्ट नहीं होता है उसके अंदर। ये धाम में हम लोग क्यों आते हैं, क्योंकि इस वातावरण, दिव्य वातावरण जो है भगवत धाम यानी कि भगवान स्वयं, इनका संग लेकर हमारे जप में हम लोग तुरंत उन्नति करना चाहते हैं, इसमें रुचि आसक्ति प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ जो हम बैठे हैं ये श्री जी का बहुत विशेष उत्कट, क्या कहते हैं उसको, वेरी सटल एंड वेरी इन पावरफुल प्लेस, बहुत उत्कट धाम है ये, तीव्र भावनाओं का स्थान है ये, मान मंदिर है, मानगढ़ पे हमने दर्शन किया भगवान का, उनका नाम है राधा मान बिहारी लाल। तो यहाँ पर राधा रानी का जो महाभाव है वो यहाँ पर प्रकट होता है, और महाभाव के अंदर एक अंग है मान, अपने प्रियतम का प्रीति बनाने के लिए राधा रानी मान करती है। कई कारण है उसके गुस्सा करने के, एक आध दो कारण बता देंगे आपको। जैसे एक बार कृष्ण भगवान राधा रानी को मिले तो उन्हें कहा कि अरे आपका चेहरा तो चांद जैसा है। अब यहाँ पर हम लोग कितने लोग बैठे हैं, कोई आपको बता देगा कि आपका चेहरा चांद जैसा, हम कितने खुश हो जाएंगे। खास करके माताओं को बोलेंगे आपका चेहरा चंद्रमा जैसा है, एकदम खुश हो जाएंगे आप। राधा रानी को गुस्सा आ गया, बोले क्यों, नहीं चंद्र पर बहुत दाग है तो आपने हमको चंद्र का उपमा क्यों दिया, चंद्र जो है घटता और बढ़ता है, खास करके घटता है, बढ़ने तो अच्छी बात है लेकिन घटता भी है, कहने का आपको कहना ऐसा है कि मेरा सौंदर्य घटने वाला है। और एक कारण है गुस्सा करने का कि उनकी एक सखी है इसका नाम है चंद्रावली, वो उसमें दोनों में होती है कंपटीशन, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग गोपी, वो कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या करते हैं उसको स्पर्धा करते रहते हैं। हाँ, तो उस झुंड की जो नेता है वो चंद्रावली सखी है, वास्तव में राधा रानी का ही विस्तार है, वो राधा रानी का ही स्वरूप है, वो राधा रानी के कृष्ण भगवान के प्रेम को बढ़ाने के लिए राधा रानी स्वयं एक और सखी बन जाती है चंद्रावली, और उनसे प्रतिस्पर्धा करती है, और उससे जो है संघर्ष की वजह से प्रेम बढ़ता है। तो लेकिन चंद्र का आपने उपमा दिया है, चंद्र में चंद्रावली के नाम का अंश है, इससे मेरा मतभेद है, इसलिए वो रुट जाती है और उठकर इस पर्वत पे आके बैठ जाती है नाराज होकर। राधा रानी की नाराजगी ये भगवान के लिए बहुत बड़ा संकट है, उनकी प्रियतमा सखी उनसे नाराज हो जाती है तो कैसे होगा। हमारे जीवन में हम कभी गुस्सा करते क्यों करते हैं, जब हमें हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, किसी भोग की किसी इच्छा को पूर्ण नहीं होता है तो हमको गुस्सा आता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, जब हमारा काम यानी कि हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है किसी चीज की तब क्रोध आता है ना। आज हमने मम्मी को कहा था कि हमको पनीर की सब्जी खानी है, उन्होंने आलू की बनाई, पनीर की नहीं मिली, मतलब इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। हमने कहा था चार बार फोन करके हम आ रहे हैं पनीर का सब्जी चाहिए तो क्रोध गुस्सा आता है। ऐसे ही क्रोध का मूल क्या है, काम का तृप्ति न होना, वो क्रोध का जननी है। और भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि काम और क्रोध जो है ये बहुत भयंकर शत्रु है जीव के, वो जीव को विनाश की ओर लेके जाते हैं। महाशनो महापापमा, इतने भयंकर पाप है ये कि ये नरक की ओर जीव को लेके जाते हैं, जन्म जन्मांतर तक बद्ध होने के लिए, जन्म मृत्यु का कष्ट भोगने के लिए। लेकिन राधा रानी का मान वैसा नहीं है, उनका क्रोध उनके लिए नहीं है, कृष्ण का प्रीति और अनुराग और बढ़ाने के लिए राधा रानी का गुस्सा है। तो कृष्ण बहुत व्याकुल हो जाते हैं और यहां पर आकर लोटपोट हो जाते हैं, इस पर्वत के नीचे रज में लोटपोट होकर याचना करते हैं, कृपा करके मुझे माफ कर दो। फिर वो भी मान करती है, फिर भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता है। फिर ललिता जी आती हैं, विशाखा जी आती हैं, उनको बनाती है लेकिन वो नहीं तैयार हैं। फिर कृष्ण को रोते रोते कृष्ण ऊपर आते हैं, उनके हाथ में हाथ देने का प्रयास करते हैं, फिर भी राधा रानी उनकी ओर देखती भी नहीं है, उधर देख रही हैं। बड़े व्याकुल हो जाते हैं कृष्ण भगवान, बड़े निराश हो जाते हैं कि अभी हमारी सखी जो है हमसे इतनी नाराज होगी, हमसे बात नहीं कर रही है, ना मिलेगी ना बात करेगी, फिर क्या जीवन का अर्थ है, ऐसा सोचते हैं वो। रति बिना प्रेम बिना क्या जीवन में अर्थ है, हमारे लिए क्या होना चाहिए, कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे हैं। अगर हमारे जीवन में कृष्ण के लिए प्रीति नहीं है तुम्हारा जीवन मुर्दा समान है, जीवत शव समान, जिंदा होते भी हम एक मुर्दा है, जिसमें प्रेम नहीं है कृष्ण का वो एक मुर्दे घूम रहे हैं सब, लेकिन जिस जीव में प्रेम है वही जीवित है। असली जीवित अवस्था तो वो है जिसमें कृष्ण का प्रेम है, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। भागवत कहते हैं भागवत जी में, द्विपद पशु, जिसके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है वो दो पैरों पे चलने वाले पशु हैं, ऐसे भागवत में वर्णन किया, मैंने कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत में व्यास देव जी कहते हैं। ये हमको समझना जरूरी है बहुत सब कुछ। हाँ, हम दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कथा सुन रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में भगवान के नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न होना चाहिए, जप में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। यहां पर प्रैक्टिस करना है भक्तों के संग में, फिर घर जाकर उसको चलाना है उसको आगे, और फिर दोबारा आना है, बार बार आना है, जिससे हमारी रति और बढ़े और बढ़े और बढ़े, बढ़ती रहे। कुछ लोग कहते हैं गए एक बार बरसाना दर्शन करके आए, अभी वहां नहीं जाएंगे और कहीं जाएंगे। नहीं, हम लोग बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक बार बार भिक्षा मांगने आएंगे यहां पर, हम बार बार पुकारेंगे, बार बार याचना करेंगे, बार बार गिड़गिड़ाएंगे, रोट पोट हो जाएंगे, विनती करेंगे श्री जी महारानी से कृपा करके हमको भक्ति दो, तब तक आते रहेंगे। ये नहीं कि ये देख लिया, वो भी देख लिया, उसको कहते हैं साइट सींग। हम लोग यहाँ पर साइट सींग करने को नहीं आए हैं। साइट भी अच्छा है, बहुत साइट सींग भी कर सकते हैं, लेकिन साइट सींग हमारा उद्देश्य नहीं है। साइट सींग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द यात्रा। बाय द वे, आपको पहाड़ पर अच्छे दर्शन भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, बट ये दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। हम लोग दर्शन करने आए ठाकुर श्री जी महारानी का, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, उनके चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो फिर कृष्ण भगवान निराश होकर चले जाते हैं, और फिर एक अद्भुत घटना होती है। वहां से एक मोर आता है और नृत्य करने लगता है, बहुत सुंदर नृत्य। यहाँ का जो मोर का जो महत्व है, मैंने एक कथा तो बताई आपको, है ना, बताई ना कथा जो मोर पंख की। हाँ, तो मोर यहाँ का एक विशेष प्राणी, मतलब पक्षी है, यहाँ की खूबी है वो मोर, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी, राधा रानी सभी मोर का आनंद लेते हैं। मोर ऐसा विशेष प्राणी है, इनको इतने रंग संगति भगवान ने बनाई है, बहुत आकर्षक पक्षी भी है वो, यहाँ पे बहुत ज्यादा मोर है। तो मोर आकर नृत्य करने लगता है, और मोर का नृत्य जो है बहुत मशहूर है ना, जब बादल आते हैं, वर्षा होती है, तो मोर बड़े भाव में आकर नृत्य करते हैं, अपना पंख जो है उसको फुलाकर, सब देखते हैं उसको सावन के महीने में मोर को। तो मोर इतना सुंदर नृत्य करता है कि राधा रानी अचानक देखने लगती है, सर क्या सुंदर मोर है, और बहुत एकाग्र होकर देखने लगती है, बहुत सुंदर मोर नृत्य करता है, बहुत मोर नृत्य करता है। और वो नृत्य देखते देखते राधा रानी अपना क्रोध भूल जाती है, उसको प्रेरणा होती है कि चलो मैं भी आगे नृत्य करूं, तो वो खुद मोरनी बन जाती है और उस मोर के साथ नृत्य करती है, और बहुत देर बहुत सुंदर ताल में सुर में गीत के साथ वाद्य के साथ में बहुत सुंदर नृत्य होता है। और बहुत देर नृत्य करने के बाद में राधा को समझता है कि ये कृष्ण है जो मोर बनकर नाच रहे हैं, तब तक उनका गुस्सा पूरा ठंडा हो जाता है। हाँ, तो ठाकुर जी अपनी प्रियतमा राधा रानी को रिझाने के लिए नाचते हैं। हाँ, इमेजिन कितना प्रेम है उनका, कितना महत्व देते हैं उनको। तो ये जो लीला है ये यहां पर हुई है। और सामने आपको दिखा पड़े हो, दिखा होगा आपने, सब लोग देखिए पीछे जरा, देखो मैं थोड़ा सा आपको ज्योग्राफिकल बताता हूँ। ये सबसे आपके मेरे सामने जो है उसके पीछे एक वाइट दिखता है ना आपको, वो श्रीजी महारानी का मंदिर, जहां पर आप सबसे पहले गए थे वहां श्रीजी महारानी विराजमान है। वो भानुगढ़ है जहां पर वृषभानु महाराज का महल है, जहां पर कीर्ति रानी वृषभानु महाराज के पुत्री के रूप में राधा रानी निवास करती है, चिरंतन निवास, वो है भानुगढ़। उसके बाद में जो सेकंड में कथा की थी हमने, वो है दानगढ़, जहां पर दो मंदिर थे, एक मंदिर में कथा किया, एक मंदिर में दान बिहारी का दर्शन किया। कितना सुंदर दर्शन था, कितना श्रृंगार बढ़िया किया था कृष्ण का। हाँ, और वो दानगढ़ हो गया। वो आगे दिख रहा है व्हाइट, उसमें बिल्डिंग छोटी सी है, वहां पर चढ़ने का रास्ता नहीं है, केवल जवान आदमी चढ़ सकता है। वो विलासगढ़ है, ब्रह्मा जी का और एक शिखर है, और एक हम यहां बैठे हुए हैं, वह है मानगढ़। तो वहां पर आप देखते हैं एक व्हाइट मंदिर दिखाई पड़ रहा है, वो राधा रानी की प्रिय सखी है, सबसे प्रिय सखी ललिता देवी, उसका गांव है वो, उसका नाम है ऊंचे गांव, उच्च ग्राम। उच्च ग्राम में ललिता देवी रहती है, उनका पिताजी का नाम अशोक है, और ललिता जी भगवान की बहुत प्रिय सखी है। दो दिन के पहले राधा रानी के उसका जन्म होता है, भाद्रपद शुक्ला षष्ठी के दिन, उसको ललिता षष्ठी कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है पर्वत जो है, छोटा सा पर्वत है, बहुत लंबा 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 सा है ना, उसके पीछे भी एक है, लेकिन ये जो वहां से शुरू होता है अटोर पर्वत कहते हैं उसको, अटोर पर्वत, ललिता जी का पिताजी का अशोक भानु, वहां से लेके लंबा जो पर्वत है इसको कहते हैं सखी गिरी, ललिता जी का पर्वत है ये, सखी मतलब ललिता जी। और फिर बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। तो इसके पीछे जो है, ये बिल्डिंग के पीछे आपने आते हुए देखा हरा रंग का बिल्डिंग है एक थोड़ा सा, सबने देखा ना ऑन द वे, वो मोर कुटी है या मयूर कुटी कहते थे। और उसकी लीला ऐसे कि यहां पर वो जो लीला हुई, भगवान ने मोर बनकर नृत्य किया, राधा रानी ने फिर खुद मोरनी बनी और दोनों ने नृत्य किया बहुत देर तक। तो एक बाबा रहते थे उस पहाड़ की चोटी पर, अंधे थे जन्म से, वो बड़े सिद्ध बाबा थे वो, उनके अंधा होने, अंधे थे वो, बहुत भजन करते थे। उनका एक शेर शिष्य था, उनका एक शेर था असली शेर जो एकदम संत था बिल्कुल। और शेर के गले में वो एक माला डालते थे, माला नहीं झोली डालते थे, झोली थैली, और शेर जाकर उनके लिए गांव में जाकर भिक्षा करता था, रोटी दाल जो भी देंगे, और फिर अपने मालिक के पास लेके आता था और स्वामी जी फिर उसको पाते थे, उसको अमनिया भोग लगा के मान खाते थे। तो उस अंधे भक्त के स्वप्न में राधा रानी आई और राधा रानी ने उनको ये दर्शन दिया लीला का, उसके स्वप्न में लीला प्रकट हुई कि भगवान नाच रहे हैं राधा रानी के साथ में, मोरनी बनकर, मोर और मोरनी बनकर। और राधा रानी ने उनको आदेश दिया कि आपको इसका चित्रपट बनाना है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अंधा हूं, उनको दिखाई नहीं पड़ता कुछ, नहीं हमारा आदेश है, हम आपको शक्ति देंगे। तो फिर राधा रानी की आज्ञा है, फिर ये अंधे व्यक्ति ने जिसको दृष्टि नहीं है फिर भी अपने हाथ से चित्र बनाया, और वो चित्र जो है जिसमें कृष्ण और राधा रानी मोर और मोरनी बन के नाच रही हैं, वो चित्रपट उस मोर कुटी में है। तो प्रसाद के बाद में आपको वहां पर चढ़ना है दोबारा, वो अंदर जाकर कैसे भक्ति भाव से अंधे व्यक्ति ने भी अपने हाथ से राधा रानी का और कृष्ण का चित्र निकाला है मोर मोरनी के रूप में, इसका दर्शन आप कर सकते हैं। क्या हमारे लिए सीख है इस कथा में? हम सोचते हैं हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमारे पास कितना ज्ञान नहीं है ना, हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये बहुत सारे बहाने बताते हैं हम भक्ति नहीं करने के लिए, है ना, मैनी रीजंस वी गिव। अरे आप तो प्रभु जी ब्राह्मण कुल के हैं, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, हमको क्या है, हम नहीं कर सकते, हम बहुत बिजी रहते हैं। अरे आप तो बहुत अमीर है, आपका सब कुछ साधना, सब कुछ साधन है, आपका बिजनेस सेटल्ड है, हम तो नया नया है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब करने को समय नहीं मिलता है, ऐसा हम लोग बहुत सारा बहाना बनाते रहते हैं। लेकिन आदमी वही करता है जो उसको पसंद है, याद रखना इस बात का। और पसंद का काम करने के लिए समय बिल्कुल निकलता है, हाँ रात को 12 बजे तक जगह रह के पसंद का काम आदमी करते रहता है, जो उसको भाता है वो करता ही है वो किसी भी हालत में, और उसके लिए बहाने बनाता है कराने के लिए। वी ऑलवेज स्पेंड टाइम वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन, और जो अपना इंटरेस्ट जो है वो अपने हाथ में होता है, क्या करना है। अभी आप लोग इतना समय निकालकर इतने दूर से बरसाने में आए, आप कह सकते हैं क्या प्रभु जी इतना दिन बर्बाद करने का जरूरत क्या, इतना बिजनेस नुकसान होता है, इतने पेशेंट वहां पर छोड़ने पड़ते हैं, इतना नुकसान होता है, बच्चे की एग्जाम हो सकती है, इतना खर्चा है और इतना टिकट निकालना पड़ता है, और इतना सब कौन करेगा, टाइम नहीं हमारे पास, बोल सकते हैं आप। या तो आप कुल्लू मनाली जा सकते हैं, तो कौन जाएगा बरसाने में, जाएंगे कुल्लू मनाली के बर्फ में जाके आनंद लेके आएंगे, आपकी इच्छा है। और बोलेंगे नहीं हमको क्या करना है, हमको टीवी देखना है, पिक्चर देख सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है, व्हाट एवर यू वांट टू डू इज इन योर हैंड। लेकिन आप स्वेच्छा से यहां पर योजना बनाकर यहां तक पहुंचे। कुछ लोग बोले क्या प्रभु जी पहाड़ में लेके जाते हैं, कहाँ घुमाते हैं पता नहीं, इतना कष्ट देते हैं, इतना दम लगता है ऊपर आने में बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप आ रहे हैं ना सब लोग, क्योंकि अपनी स्वेच्छा को आप अपना रहे हो, यू आर एग्जीक्यूटिंग योर फ्री विल, उसको एक्सेप्ट करके आप खुद चढ़ के आ रहे हो, फिर आपको आनंद भी प्राप्त हो रहा है। तो ये स्वेच्छा जो है ये अपने हाथ में, इच्छा होनी चाहिए। उसने पहले बताया कि मैं अंधा हूं, लेकिन जब श्रीजी ने कहा कि आपका काम हो जाएगा, चिंता मत करना, मैं बल दूंगी आपको, तो अंधे आदमी ने भी पेंटिंग किया। हाँ, इसलिए भक्ति में कोई बाधा नहीं है। रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि भक्ति मार्ग में कोई भौतिक बाधा नहीं है। आप कुछ कह सकते हो मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैंने पढ़ा है, मैंने वो नहीं किया है, मैं कैसे कर सकता हूं। लेकिन मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीन तारेणम परमानंद माधवम। मतलब क्या है, गुरु महाराज की कृपा से आदमी क्या नहीं कर सकता है, गुंगा आदमी बोल सकता है, पंगु आदमी पहाड़ चढ़ सकता है, हाँ कविता बोल सकता है गुंगा आदमी, क्या नहीं कर सकता है। सूरदास थे, अंधे थे ना, वो उधर रहे थे वो चंद्र सरोवर के पास, गोवर्धन के पास, कितने सुंदर भजन लिखे उन्होंने, आज भी उनकी भजन जो है वो सबके लिए मार्गदर्शक तत्व है, सिद्धांत के साथ, केवल भावना नहीं है उसके अंदर। तो कोई कमी हमारे अंदर नहीं हो सकती है अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। भगवान आपकी सारी कमियां पूरी कर देंगे अगर आप उनके शरण लेते हो, जो भी डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है। कि धनवान व्यक्ति के पास आप जाते जाएंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि मेरा फी कैसे भरेंगे, कपड़ा कौन देगा, खाना कौन खिलाएगा। तो जो क्षमता वाला आदमी है, सक्षम व्यक्ति है, वो आपका सब कमी आप पूरी कर देगा। उसी तरह से इस कथा से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं कि कोई भौतिक त्रुटि जो है वो हमारे भक्ति में बाधा नहीं बन सकती है। हमको केवल इच्छा होना चाहिए, बस। यू मस्ट हैव डिजायर। हमारे हाथ में क्या है, केवल इच्छा हम कर सकते हैं। आई वॉन्ट, उसके आगे देना नहीं देना उनके हाथ में है। एटलीस्ट यू वॉन्ट फर्स्ट। आपके अंदर इच्छा ही नहीं तो क्या कर सकते हैं भगवान। आपको चाहिए तो कम से कम चाहने की इच्छा, चाहना तो आपको करना है ना। यू एटलीस्ट हैव टू वॉन्ट समथिंग, फिर भगवान आपको देंगे। इसलिए भक्ति का मतलब एक ही है, क्या चाहना है वो सीखना, यही भक्ति है। वॉट टू डिजायर। अभी हम लोग डिजायर कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, इज्जत चाहिए, पद चाहिए, मान मरातब चाहिए, हमारी पूजा होनी चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए, सब कुछ। हम लोग नाराज हो जाते हैं, सम्मान नहीं किया हमारा उन्होंने, खास करके समधी लोगों के बीच में। बहुत परेशान होते हैं हम लोग, लेकिन उससे लाभ क्या है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति चाहते हैं तो हमारी योग्यता ना होते हुए हमको मिल सकती है, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। बट पहले चाहना है कि आई वॉन्ट यू माई लॉर्ड, आई कैनॉट लिव विदाउट यू, मुझे तीव्रता से आप चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए, तब वो आपको सारी त्रुटियां अयोग्यता होने पर भी देंगे उसको। जैसे राजा रानी ने कृपा करके अंधे से भी चित्रपट बनवाया। ये यहां का सार है। एसेंस में यह है कि हमको सोचना नहीं कि हमारे पास योग्यता नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आके इच्छा करने को सीखना है, हाउ टू डिजायर टू प्लीज कृष्णा, टू प्लीज राधा रानी। हाउ टू डिजायर, हाउ टू इंटेंसिफाई आवर डिजायर, अपनी इच्छाओं को कैसे तीव्र करना है, ये यहां पर हमको आके सीखना है। और इसी के लिए हम लोग यहां पर दर्शन करते हैं। और ये धाम जो है भगवान का बहुत लीलामय है। एक छोटी सी लीला आपको बताता हूं, क्यों यहां पर भगवान राक्षसों को नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो ऐसी लीला यहां पर करना चाहते हैं। हाँ, आप जानते हैं भगवान बड़े चोर शिरोमणि हैं, जानते हैं ना, सब कुछ चोर लेते हैं। गोपियों से बात करते करते यहाँ का मणि निकाल लेते हैं, यहाँ का निकाल लेते हैं, जेब में डालते हैं, फिर पकड़ते हैं तो बोलते हैं अरे यही जेब में तुम्हारा मणि था। हाँ पता नहीं, वो ऐसे बात बात में आ गया जेब में मेरे, ऐसे बोल लेते हैं। लेकिन हर कदम सोचते क्या चुरा लूं। हाँ, तो वो बचपन में माखन चुराते थे, उसके बाद में वस्त्र चुराए उन्होंने गोपियों के, है ना। बाद में बोलते वो मन भी चुराते लोगों का, मन मोहन है वो, हृदय भी चुरा लेते सबका। तो ऐसे रोज की चोरी से गोपियां बहुत परेशान थी। कभी भी मिलते हैं तो ये गायब, वो गायब, ये गहना गायब, ये वस्तु गायब, क्या है ये रोज का रोज। इनको इतनी मतलब कंडीशन रिफ्लेक्स बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, समथिंग कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया इन मेडिकल लैंग्वेज ऑल्सो। उसका मतलब क्या, वो जो व्यक्ति होता है क्लेप्टोमेनिया वाला पेशेंट होता है, वो जो दिखेगा वो वस्तु उठाते रहता है हमेशा, वॉट एवर ही सीज ही पिक्स अप। बहुत अमीर आदमी है वो, फिर भी एमडी डॉक्टर भी होगा। हमारे पास एक थे डॉक्टर एमडी, ही वाज अ क्लेप्टोमेनिया पेशेंट। तो वो एमडी होने पर भी, धनवान होने पर भी, उनका खुद का आईसीयू था, बड़ा हॉस्पिटल था उनका, लेकिन जो क्लेप्टोमेनिया डिसीज होता है उसके अंदर वो ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जो दिखेगा उठा लेते हैं, जेब में डाल लेते हैं। तो उन्होंने एक इन्फ्यूजन पंप था हमारा 60,000 का, वो भी उठा के बैग में डाल के लेके गए थे। मतलब उनको ऐसा जरूर नहीं कि वो चोरी करे, बहुत धन है उनके पास, लेकिन एक अंदर से प्रवृत्ति होती है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो एक डिसीज है, उसको ट्रीटमेंट जरूरी होता है। तो हमने जाके फिर उसके नर्सिंग होम से वो पिकअप कर लिया, फिर बोलता है मैंने नहीं चुराया उसको। फिर उसको दिखाया, ये बकायदा नंबर का हमारे हॉस्पिटल में बिल है उसका परचेज का, आपके आईसीयू में मिला, वो सब मैच करके पुलिस को दिखाया, तो बोला हो सकता है मैंने लिया होगा। ऐसे कुछ कृष्ण भगवान में चोरी की प्रवृत्ति थी, जो दिखा वो चोरी करते थे। तो गोपियां बहुत परेशान हो गई थी, उनको बोलेंगे इनको ना अच्छा सबक सिखाएंगे, एक बार बहुत बढ़िया सबक सिखाएंगे। तो वो एक दिन बहुत अच्छे अच्छे हर एक सखी अच्छा अच्छा खाना बना के लेके आती, मिठाई पंच पकवान जो बढ़िया बढ़िया माल है सब लेके आते हैं। और शुरू से ही कोई बहस नहीं, कोई वाद नहीं, कुछ नहीं। आज जैसे उस दिन हुआ ना, उस दिन आए तो कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, तुरंत माखन दे लो बोलते हैं। उस दिन भी कुछ वाद विवाद कुछ नहीं, तुरंत बोले बैठो ठाकुर जी, बैठो कन्हैया, लाओ खाओ, मालपुआ खाओ, पुड़े खाओ, हलवा खाओ, रबड़ी खाओ, सब खिलाते बड़े प्रेम से, सब गोपियां अपने हाथ से परोसती है। बोले आज का दिन बड़ा अच्छा है, हाँ पता नहीं सुबह में किसका दर्शन किया था, आज बहुत अच्छा दिन है आज। नहीं, सखियां प्रेम से खिला रही है, और इतना माल खवा खवा के इतने भारी हो जाते हैं। हाँ, तो भारी हो तो उठ भी सकते नहीं, तो मैं भी यही लेट जाता हूँ। बहुत नींद आ रही है, अरे हाथ धोने के लिए भाई धुलवा दो, ऐसे में लेटे लेटे हाथ धुलाता हूँ, मेरा हाथ पकड़ो धो लो उसको, मैं भी नींद आ रही है मुझे, सो जाते हैं उधर ही, बिल्कुल गहरी नींद ना, सब रबड़ी वबड़ी घूम रही दिमाग के अंदर, आराम से नहीं सो रहे हैं। जैसे गहरी नींद में जाते हैं सब सखियां उनका सारा सामान चोरी कर लेते हैं, मुरली मोरपंख माला वाला सब जितना भी उनके अंदर गहना है वस्त्र है सब उतार देते हैं, पूरा उसको खाली कर देते, पूरा चले जाते खाली करके, बोले हमको चोरी करते रोज, हमको उल्लू बनाते हैं, आज अच्छा मजा चखाएंगे, बढ़िया मजा आएगा घर पे एकदम। माया जब डांटेगी कन्हैया को, कहाँ गए तुम्हारा ये पुष्पहार, या कहाँ गया ये कुंडल कहाँ गया, हम देखेंगे छुप छुप के कैसे मजा आ जाएगा। बड़ी देर के बाद ठाकुर जी उठते हैं, अरे वाह तो बढ़िया मजा आया, जिलबी विलबी खा के, अरे देखते तो क्या है सब खाली, कोई हाथ में अंगूठी नहीं, कुछ नहीं, बाजू बंद नहीं, कमर पट्टा नहीं, गले में हार नहीं, कुछ नहीं, अरे क्या गड़बड़, मैं घर में क्या बताऊंगा, मैया क्या बोलेगी, बाबा क्या बोलेंगे, समझ जाते हैं अंतर्यामी तो है ना, वो समझ जाते हैं कि सब गोपियों का खेल है। हाँ कोई बात नहीं, खुद को बहुत होशियार समझते हैं, मैं बताता हूँ कैसी होशियारी होती है। चले जाते घर पे, बहुत डांट वाट खाते हैं, रोते हैं, बोलते पता नहीं क्या हुआ, मैं सो गया था, कोई चोर आके सब ले गया, मैया माफ कर देना, मन में हंस रहे हैं, ठीक है दिखाता हूँ, सब माल ला के दूंगा वापस, सोच रहे मन में, सब जो पहना था आपने मैं दे दूंगा, लेकिन बोलते नहीं कुछ। फिर कुछ दिन बाद में एक सखी आती है बसाने में, बड़ा घूंघट ओढ़ के ऐसे, बड़ा घूंघट मार के, पुराने जमाने में यहां तक ऐसे घूंघट लगाते थे नई दुल्हन, तो बड़ा श्रृंगार करके आती है, बरसाने में प्रवेश करती है और कुछ सखियों को देखती है, देखते ही शाम ऐसे करके और बेहोश हो जाती है। तो सखी एकदम आश्चर्य में आ जाती, अरे क्या सखी है ये, कहाँ से आई है, लगता है नई ब्याही हुई है, किसी गोप के घर में नई शादी करके आई होगी, क्या प्रेम है कृष्ण के प्रति, नाम लेते बेहोश होकर गिर रही है, ऐसा प्रेम होना चाहिए। सखियां कभी ईर्षा नहीं करती है कि हमसे ज्यादा प्रेम करती है, वो तो तुरंत तो प्रभावित हो जाती है, उनका मन इतना सरल है, उनके मन में ईर्षा है नहीं, तो किसी और की अधिक भक्ति को देखकर वो अधिक प्रसन्न हो जाती है। तो सब चार लोग इकट्ठा हो जाती है, फिर और आठ लोग आते हैं, जब नए आते हैं तो फिर से शाम करके ये बेहोश हो जाती है, वाह क्या भक्ति है, सब कोई कपड़े धो रहा है, कोई कुएं में पानी निकाल रहा है, कोई गाय के दूध निकाल रहा है, कोई मक्खन बना रहा है, कोई कंडे बना रहे हैं, सब काम छोड़ के उस पर आते हैं, और ये आगे आगे श्री जी के महल में बढ़ रही है, बार बार गिर रही है, सब अभी 10, 15, 20, 50, 100, 200, 1000 ऐसे सारी सखियां उनके पीछे पीछे देख रहे हैं, कोई अद्भुत सखी आई है, किसके घर में भाई है ये, किसकी बहू है, से बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कितना प्रेम है उसके अंदर, और जब चर्चा कर रहे बीच में शाम शाम सुंदर करके गिर जाती है, हे गोपाल, पर गिर जाती है। और एक बार फिर ऐसे होता है कि ये इतनी बेहोश हो जाती है कि सब लोग दुखी हो जाते हैं, मतलब चिंतित हो जाते हैं कि अरे क्या होगा, मर जाएगी शायद, पता नहीं, बेहोश हो रही है, बार बार कुछ ले नहीं रही है, कुछ कुछ कर नहीं पा रहे, उसके लिए हम शायद इतने विरह में शायद ये जान छोड़ देगी अपनी। तो राधा रानी के पास लेके आते हैं कि राधा रानी कुछ उसका इलाज करेगी, तो राधा रानी को उसको वैसे मतलब वो गिर ऐसे गिर रहे ना पूरा शक्ति से, पूरा हीन होकर ऐसे, तो सबके गोद में ऐसे वो उसको राधा रानी के पास लेके आते हैं, और राधा रानी बाहर आते ही राजा को देखते ही श्याम सुंदर करके वो तुरंत गिर जाती है वापस, और बहुत देर तक बेहोश रहती है, सब हवा दे रहे हैं उसको, क्या क्या कर रहे हैं, अरे क्या करे, परेशान है सब लोग, अरे कैसे इसकी जान बचाए, बेचारी मर जाएगी, राजा को, राजा कुछ करो इसको, बहुत सोच रहे हैं, सोच रहे हैं क्या किया जाए, वो होश में नहीं आ रही, पहली बार काफी बार पानी लगाया छिड़काया तो होश में आई थी, अभी तो होश भी नहीं आ रही है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई सांस नहीं चल रही है, कोई नाड़ी नहीं चल रही है, लगता है जान दे देगी ये लड़की, तो क्या करें अभी। तो फिर ललिता विशाखा तो सबकी प्रधान सखी ना, विचार करते रहते क्या करे क्या किया जाए, समस्या का समाधान कैसे किया जाए, तो कहते राधा, अरे राधा रानी कितनी बड़ी आइडिया है, देखो कल आपने श्याम सुंदर का सब तो चुरा लिया था हम लोग ने ना, सब तो माल पड़ा है अपने पास, तो आप श्याम सुंदर बन जाओ, हम आपका श्रृंगार करेंगे, आपको सांवला बना देंगे और मोरपंख लगा देंगे, जो भी हमने चुराया है उनका सब सामग्री हमारे पास है, आपको हम श्रृंगार करेंगे, हो सकता है कि आपको देखकर मतलब श्याम सुंदर का दर्शन करके थोड़ा इसका विरह जो है वो शांत हो जाए, थोड़ा जीवित रह सके, वो कुछ खा पी ले तो जीवन रहेगा उसका। तो राधा रानी को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया आइडिया है, अभी इसके इससे अच्छा उस चुरे और चुराए हुए सामान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो फिर सब सखियां जाती तुरंत, वो कुछ सखियां उस पर बैठती हैं, हवा दे रही है, बोलो इसका ध्यान रखो, तब तक हम तुरंत श्रृंगार करते हैं इनका। तो राधा रानी को अंदर ले जाते हैं, तुरंत उसका वस्त्र उतार के राधा को कृष्ण का श्रृंगार कर देते हैं, पूरा पूरा उनका जितना भी सामान चुराया यहां से लेकर नखशिखांत सब उनको पहना देते हैं, सांवला रंग कर देते हैं, और वो भी पीताम्बर पहन के। कहाँ से आवाज आ रही? ऐसे खड़ी हो जाती है, बोले देखो सखी श्याम सुंदर जी आए हैं, देख तो लो। तो सखी जो है सोई हुई है गदा को गोद में ना, ऐसे पड़ी हुई है बेहोश सी एकदम, ऐसे घूंघट उंगड़ मार के, जैसे श्याम सुंदर जी आए, देखो देखो आपके सामने खड़े हैं, देखो कैसे त्रिभंग अवस्था में एक पांव सामने रखे खड़े हैं, कैसे मुरली धरी हुई है, कैसे उनके अधरों के पास मुरली लगी हुई है, कैसे मोर पंख शोभा दे रहा है सर पे, देखो पीताम्बर धारण किए हुए हैं, कितने अलंकार पहने हुए हैं। सब सुन रही है ध्यान ध्यान से, और झट से ऐसा कुछ उछलती है जोर से ऐसा मुंगन उठा के, अरे पकड़ लिया मैंने आपको, देखा ना बड़े होशियार बनते हो। कौन थे वो? कृष्ण ही थे, सखी बनकर घूंघट ओढ़ के आए थे और ये वेट कर रहे थे सब, माल तो बाहर आ जाए पूरा, फिर दर्शन देंगे हम अच्छी तरह से। पूरा घूंघट उठा के दिखाते हैं, देखो उतारो सब माल, बड़े होशियार बनते हो। हाँ हम हमसे ये होशियारी नहीं चलती है, हम यहाँ के चोर शिरोमणि हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं जा सकता है। ऐसे यहाँ पर चटपटी लीलाएं होती रहती है हमेशा सखियों के घर में। जैसे कि कई बार ठाकुर जी को राधा रानी का विरह सहन नहीं होता है, हाँ, और यहाँ के अंतरंग महल में ना वो सभी पुरुष लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उनको नंदगांव में बैठकर इतना तड़प हो रही है कि कैसे राधा रानी को मिले। तो फिर वो कभी चूड़ी बेचने वाला बनते हैं, कई बार सखी बन के आते हैं यहाँ पर, चूड़ी बेचने के बहाने आते हैं, सब सखियाँ आती है चूड़ी बनाने के लिए, फिर राधा रानी को भी चूड़ी पहनाते हैं। कई गीत है यहाँ पर ऐसे, कभी झाड़ू लगाने वाले बनकर आते हैं, कभी मालिन यानी कि फूल बिनने वाले, फूल बेचने वाले बन के आती है, और कभी ज्योतिषी बन के आती है, कभी हाथ देखने वाले बन के आती है, ताकि राधा रानी का हाथ तो हाथ में आएगा ना, देखेंगे अरे तुम्हारा जो दिल में जो व्यक्ति के ऊपर प्रेम करती हो बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे पिता माता का लड़का है, मैं जानता हूँ कि तुम उस पर बहुत प्रेम करती हो। वो सांवले रंग का है, वो लगता है मुरली भी धारण करता है, वनों में जाकर गौचारण करता है ना। राधा रानी शर्माती है, ये ज्योतिषी इतना बढ़िया ज्योतिषी है, सब जानता है। और कभी वैद्य बन के आता है, राधा रानी भी बुखार आने का बहाना करती है, फिर वो वैद्य जी बनकर आते हैं और बोलते हैं कि ये राधा रानी को ऐसी बीमारी हुई है कि इसको एकांत चाहिए, सब लोग बाहर जाना चाहिए, मैं अंदर उस आके एकांत में इलाज करूंगा। बहुत अंदर बंद करके फिर बहुत दूर आनंद करते हैं, बहुत प्रेम से राके हैं, बीमारी दूर हो गई, अभी दोबारा कभी हुआ तो मुझे ही बुलाना। ऐसे वैद्य बंद कर आते हैं। ऐसे एक बार ऐसे हुआ था कि राधा रानी की शादी तो अभिमन्यु से होती है, बड़ी लंबी कथा है, कल मैंने बताई थी ना, कल आप लोग थे कल कथा में, कुछ लोग नहीं थे, कुछ थे यूके के डिवोटिस थे ना कल, वो कैसे ब्रह्मा जी के सम्मोहन लीला में फिर उनका सबकी शादी राधा रानी की और सब गोपियों की हो जाती है गोपाओं से। तो वो घर है जावट, जावट नंदगांव के आगे गांव है जहां पर राधा रानी का ससुराल है। तो वहां पर ये एक बार सखी बनकर मिलने जाते हैं, हाँ, और मिलने के बाद में जब भी उनकी सासू है राधा रानी की, जटिला और कुटिला, एक सासू है एक ननंद है, तो वो हमेशा उनका काम एक ही है कि इनको मिलना नहीं चाहिए, लोग बहुत पहरे में रहते हैं, लेकिन ये सखी बन के अंदर जाती है और फिर दरवाजा बंद करके मिलते रहते हैं, और इनको खबर लगती है नहीं वो सखी बन के गए थे, वो श्याम सुंदर ही थे, तो डंडा लेके आते दरवाजा खोलो, तो श्याम सुंदर खिड़की से कूद के भाग जाते और अपनी मुरली वहां भूल के जाते। अभी राधा रानी को पकड़ते, देखो झूठ बोल रही हो तुम, ये मुरली तो है यहाँ पर। तो राधा रानी को अचानक मन में विचार आता है और वो अचानक बोल लेती है, अरे नहीं ससुर जी माता जी, तो कल तो मुरली की वर्षा हुई थी यहाँ पर, वो मुरली यहाँ पर गिरी है। बोले क्या भक्ति हो, पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें पकड़ चुकी हूँ, कृष्ण के साथ में यहाँ बैठी थी। नहीं मैया देखो सब जगह मुरली की वर्षा हो रही है। तो बाहर जाके सब जगह मुरली ही मुरली है, सब घर में, बोले घर में हो गया, सब बाहर में आंगन में सबके घर में मुरली मुरली, ने कहा था ना मुरली की वर्षा हो रही। एक बार ऐसे ही हुआ कि राधा रानी अपने घर में बैठी है सखियों के साथ में, और कृष्ण के विरह में थी वो ससुराल में, और कृष्ण भी यहाँ व्याकुल है, और वो कोकिला वन नाम की जगह है यहाँ पर नंदगांव के आगे कोसी के रास्ते पर है, वहां पर वो कोकिला बनकर एक दूसरे को मिलते हैं, ऐसे ऐसा वन है। वहां पर कृष्ण भगवान अपने सखा जो है सुबल सखा, बहुत मित्र उनका बहुत उत्कट मित्र है वो सुबल और उज्जवल, तो सुबल को लेके वहां बैठे हुए हैं, विरह में व्याकुल होकर मुरली बजा रहे हैं, मुरली में राधा को पुकार रहे हैं कि आओ। राधा मुरली सुन के वहां व्याकुल है कि मैं जा नहीं पा रही हूँ, मेरी सासू जी जो है डंडा लेकर दरवाजे पर ही बैठी हुई है, कैसे निकलूं मैं। तो बहुत दुखी है वो, सर पे ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे बैठी हुई है, रो रही है। और यहाँ पर कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं और जाके देखते हैं कि आई क्या। जनरली आती है वो मुरली बजाने पे, लेकिन ये देख रही है वापस फिर नहीं आ रही है, फिर वापस मुरली बजाते हैं, फिर जाके रास्ता देखते हैं, फिर आते हैं। और बहुत देर बाद, बहुत बार मुरली बजाने पर व्याकुल हो जाते हैं बहुत, और सुबल से कहते हैं, सुबल अब मैं मेरे जीवन को रक्षा नहीं कर सकूंगा, अब मैं प्राण त्याग दूंगा, मेरी प्रियतमा नहीं आ रही है। सुबल तुम बहुत कुशल हो, हमेशा इस संकट में मेरा सामना कर सहायता करते हो, जाओ कुछ करो, कुछ दिमाग लगाओ और राधारानी को लेकर आओ। देखो सुबल, अगर लौट के नहीं आओगे राधारानी को लेकर तो मैं आपको मृत मिलूंगा यहाँ पर। हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे गोपाल, ऐसे मत कहना, मुझ पर विश्वास रखना, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब कुछ करूंगा, आप अपना प्राण को बनाए रखना, हाँ जल्दी मत करना, मैं आऊंगा राधारानी को लेकर। और वो उनको सांत्वना देकर, कृष्ण बड़े दुखी में है, दुख में है, चले जाते हैं वो और सीधे जाते हैं जावट में, जहां पर जटिला का घर है, जहां पर अंदर राधारानी बैठी है। और ऐसे खोए खोए से वहां घूमने लगते। तो जटिला कहते हैं, अरे सुबल क्या ढूंढ रहे हो। तो नहीं मैया, मेरा जो बछड़ा खोया है और वो रास्ते में किसी ने कहा कि जटिला देवी के घर के ओर गया है वो, इसलिए मैं यहां ढूंढ रहा हूं। अच्छा, अरे बहुत धूप में आ रहे हो, चेहरा लाल हो रहा है, थोड़ा तनिक आराम कर लो, वो जलबल पी लो अच्छी तरह से। तो ठीक है, बोले जाओ अंदर जाओ, हमारे सखी हैं, हमारा मेरी बहू है राधा रानी, सखियां बैठे, उनसे मांग लो, जलबल पी लो, थोड़ा सा फ्रेश हो लो, लस्सी वस्सी मखन वर खा लो, फिर दोबारा अपना जो है बछड़े को ढूंढना आप। इनको यही चाहिए था, तुरंत जाके घुस जाते अंदर। और राधा रानी व्याकुल बैठी है वहां पर, सुबल जी आते हैं। सुबल का एक विशेषता है कि सुबल जी जो है ना, वो उनका चेहरा राधा रानी जैसा ही है तो वो लड़का, लेकिन बहुत सुंदर दिखते हैं उनके जैसे ही। तो वो सुबल को इतने बड़े खुश होते हैं, वो सुबल कहता है कि देखो गोपाल जी, हमारे बहुत व्याकुल है आपके लिए, मतलब मैं भी तड़प रही हूँ, क्या करूँ, मेरे सासू जी दरवाजे में बैठी है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। सुबल जी कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, आप क्या करो, आप मैं बन जाओ, मैं आप बन जाऊंगा। उसमें दो समस्या है, मैं तो स्त्री, मैं कन्या हूं ना, मेरा वक्षस्थल बहुत बड़ा है और मेरे लंबे बाल हैं, इसको कैसे छुपाऊंगी। बोले कोई नहीं, आपको ये बताने के पहले ये आइडिया सोच के ही मैं आया हूँ, डोंट वरी। मैंने उनको बताया कि बछड़ा मेरा खो गया है, तो तुम क्या करना, मेरा जो वस्त्र है मैं फेटा बांध के आया हूँ, तो सारे बाल जो फेटे के अंदर बांध देना पूरे, सब श्रृंगार जो है यहाँ पर जो लिपस्टिक लगाया सब कुछ, काजल सब निकाल देना बिल्कुल, सब बालों को फेटे में बांध देना, और मेरा पूरा धोती कुर्ता पहन लेना अच्छी तरह से। हाँ, और रही बात वक्षस्थल की, तो जो बछड़ा है वो ऐसे छाती पर लेना, ऐसे बछड़े को पकड़ के जाना कि बछड़ा मिल गया, बछड़े ढूंढने को आया था, आपके ही गोटे में मिला, ऐसे करके बांध देना, फिर निकल जाना आप। और वो जब पूछेंगे आपको, अरे कहाँ जा रही हो, मतलब सुबल बन गया ना, सुबल कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं ऐसे बोलना खाली, ऐसे बछड़ा मिल गया, ऐसे मतलब बाकी बोलने की जरूरत नहीं, कुछ आवाज प्रकटनी होगी ना कन्या की, फिर खाली ऐसे बोलना बस चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो बड़ी खुश हो जाती है वो, तुरंत ललिता विशाखा बैठी हुई, तुरंत एक्सचेंज चालू होता है उनका, इनका उतारना उनको पहना, उनका उतार के इनको पहनना। और ललिता देवी और विशाखा देवी सब सखियां मिलकर इनका बढ़िया श्रृंगार करती है, उनका पूरा बाल बाल बांध के, फिर उनके हाथ में छाती पर उसको बछड़ा देती है, ऐसे पकड़ के वो बाहर निकलती है। तो सुबल जी, कोई दूध वूध पी लिया अच्छी तरह से, माखन खा लिया, बछड़ा मिल गया, चले जाते हैं बड़े उत्सुकता से, जैसे कुछ खोई हुई वस्तु मिलती है ना किसी को, तो कितने आनंद से भागता है उसे, इनको तो मन में कृष्ण को मिलना है तो भाग रही है वो। और यहाँ पर सखी बनकर पूरा घूंघट वूंघट ओढ़ के फर्स्ट क्लास अपने सुबल जी बैठे हैं, सखियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, कैसे मैंने आइडिया किया। तो बहुत दूर जाते राधा रानी, फिर कोकिला वन में प्रवेश करती है। अभी वो भी थोड़ा सा परिहास के मूड में है, सुबल के मूड में ऐसे आ रही है, वहां पर ताक रहे हैं, अरे सुबल अकेला आ रहा है, मतलब फेल हो गया वो। इतना विश्वास के साथ में उसको भेजा था मैंने कि ये मेरा काम करेगा, लेकिन अब मुझे प्राण त्यागने ही पड़ेंगे। सुबल तुम अकेले आए हो, सुबल मेरी जान की परवाह नहीं तुम्हें, ये चाहते ना कि मैं जीवित रहूं, मैं मेरे प्राण त्याग दूंगा, सुबल तुम जाओ राधा रानी को लेके आओ। तो राधा रानी कुछ बोलती नहीं, जान मुझके मुंह से आवाज नहीं निकलती, और ये बेहोश हो जाते हैं। तो राधा रानी को रहा नहीं जाता है, फिर बछड़े को छोड़ देती है और तुरंत अपना फेटा जो है निकाल देती है, देखो मैं आई हूँ, सुबल ने यह सब व्यवस्था किया है। तो कोकिला वन में वो बहुत अच्छी तरह से घूमते हैं, वार्तालाप करते हैं, आनंद की लीला करते हैं। फिर जाने का समय होता है तो फिर व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन तभी थोड़ा विरह शांत हो गया उनका, तो वो फिर सुबल का वेश बनाते हैं और फिर सॉरी सुबल का वेश निकाल लेते हैं, फिर राधा रानी बन के यहाँ पर क्या होता है, राधा रानी जो बनी हुई है सुबल, वो मटका लेके निकलते हैं। कहाँ जा रही है वो? और जमुना जी पानी लेने जा रही है, सब सखियां भी मटका ले जा रही है। चलो कोई बात नहीं, संभाल कर रखना, उस पर ध्यान रखना जरा, कभी कभी ये गुमसुम हो जाती है, कहीं कहीं खो जाती है अपने आप, चले जाते सब लोग तुरंत जल्दी जल्दी चले जाते हैं। और जमुना किनारे में फिर एक्सचेंज करते हैं ड्रेस को, फिर भरा हुआ मटका जो है वो राधा रानी के हाथ में देते हैं, फिर घर चले जाती है। इस तरह से वो कई अलग अलग प्रकार के रूप धारण करके, ऐसे ही उनको एक बार सांप दंश का उन्हें नाटक किया राधा रानी ने, कि सांप दंश हो गया है, वो सब व्याकुल है, वो परेशान है सब लोग, क्या करे। राधा रानी तो वॉच रखती है, लेकिन बहुत प्रेम भी करती है उनके ऊपर, बहुत प्रेम करती है जटिला कुटिला उन पर, लेकिन अपना पुत्र अभिमन्यु की पत्नी है तो कृष्ण से मिलने के लिए मना करते रहते हैं उनको। तो एक बार सांप दंश होता है, क्या करें, सब वैद्य को लेके आते, कोई उपाय नहीं हो रहा है, वो बेहोश होती जा रही है, और उसका जो दिखता है ना वो पाप, जो शाप क्या बोलते हैं उसको, जहर जो है वो सब बढ़ते जा रहा है, सब व्याकुल है। तो कहीं से एक वैद्य आता है, मैं इसका इलाज करूंगा, मेरे पास सिद्धि ऐसी है कि जिस सांप ने इसको काटा है उस सांप से मैं बात कर सकता हूँ, और सांप के माध्यम से उसका विष मैं उतार सकता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब वैद्य है, बड़ी सिद्धि है उसके पास में, लेकिन कंडीशन एक ही है, कोई बीच में होना नहीं चाहिए, मैं और पेशेंट बस। तो दरवाजा बंद करके वो सांप की भाषा में बात करने लगते हैं, जैसे बड़ा वैद्य, बहुत सिद्ध वैद्य है, एकदम सांप से बात कर रहे हैं, अरे वाह, क्यों काटा। फिर बाद में फिर थोड़ा सा ये मंत्र है ना, ऐसे करके फिर बाद में बात करने लगता है, हे सर्प, राधा रानी को क्यों काटा? ने कहा कि मैंने इसको इसलिए काटा कि इसके जीवन में अगर कृष्ण को मिलना नहीं है तो इसका जीवन में अर्थ ही क्या है। तो क्यों नहीं, इनकी सासू जो है और जो ननंद है जटिला कुटिला, इनको हमेशा मना कर देती है और उनको मिलने को देती नहीं है, तो मैंने सोचा कि राधा रानी का जीवन ही व्यर्थ है अगर वो कृष्ण से नहीं मिल सकते हैं। तो फिर क्या चाहते हो? बोले इनको जटिला कुटिला को बताया जाए, और जानबूझ के जोर जोर से बोल रहे हैं कि बाहर भी सब लोग क्या कर रहा है वैद्य, दरवाजा बंद करके कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, क्या संवाद हो रहा है, कौन सी बातचीत से वो जहर निकाल रहा है, सुन रहे हैं ना। जरा जोर से ही बोलता है कि जटिला कुटिला से कहो, मतलब पहले खुद बोलते हैं फिर सांप के भाषा में बोलते हैं, भाषा अपनी है लेकिन वो ऐसे बोल रहे, सांप बोल रहा है अपने सांप की भाषा में, कि जटिला कुटिला को बोलो कि आज से उनको विरोध न किया जाए। धट से धट जटिला कुटिला दरवाजा खुल के अंदर आते, कहते हैं कि हम वादा करते हैं कि हम कभी इनसे विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, सांप का विष खत्म हो गया। ऐसा लीला यहां पर होते रहता है। हाँ, इसलिए वो राक्षस को यहां पर आने को मना कर देते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत सुंदर लीला है। ऐसे एक बार राधा रानी जो है वो जा रही है देवी की पूजा करने के लिए, उनका एक दोपहर का एक समय था, वो दोपहर में सूर्य देव की पूजा करते हैं, पूजा करनी है कृष्ण की, जो भी करना है कृष्ण के, लेकिन भाना सूर्य देव का है। तो एक सूर्य कुंड है जावट के आगे, वहां पर वो जाके हमेशा मिलती रहती है उनको। तो देवी की पूजा भी करते हैं कई बार इसी बहाने से। तो ये देवी की पूजा करने जाती है तो एक बार जटिला कुटिला जो है वो छुप छुप के उसके पीछे जाती है, चलो आज उनको रंगे हाथी पकड़ लेंगे। तो ये अंदर जाती है तो वो देवी के पीछे कृष्ण भगवान जो है वो उनका वार्तालाप हो रहा है और जोर जोर से बातें कर रही है। तो कृष्ण की आवाज पहचान लेते हैं, जटिला कुटिला अभिमन्यु को लेके आती है, तो आज तो मैंने अभी, वो बड़ा मग्न है उस बात में, अभी आप देख लो, आप मानते नहीं हो ना कि वो कृष्ण से मिलने जाती है, देखो आज हमने पकड़ लिया उनको, अभी आप जाओ और खुद अपने आंखों से देख लो। तो वार्तालाप हो रहा है वहां पर, तो ये तुरंत जाते हैं ऐसे गुस्से में कि अभी पकड़ेंगे रंगे हाथ दोनों को, आज दोनों को दंड देंगे। और राधा रानी ऐसे है पीछे, उनकी पीठ है और मूर्ति ऐसी है देवी की और पीछे कृष्ण है उसके। तो वो अचानक देख रहे हैं जटिला कुटिला, अरे ये बेटा दंडवत कर रहा है जाके। बोले क्यों? वो कृष्ण भगवान देवी बन जाते हैं और देवी से प्रार्थना कर रही है, हे देवी मेरा कल्याण कर। बोले मैया किधर है कृष्ण? ये तो देवी यहाँ पर खड़ी है। हाँ मंदिर में कहीं कृष्ण नहीं है। और बोले फिर माता का अपमान होता है ना कि माता ने इतना बुला के लेके आया और वो सब झूठ मूठ की बात के लिए बड़ी नाराज होकर संकोच करके चली जाती है। फिर वापस देवी के रूप में कृष्ण आते हैं, फिर बात करते हैं। ऐसे ही वो जाते हैं जंगल में एक बार पूजा करने के लिए, तो उनको कृष्ण मिल जाते हैं रास्ते में। बोले कहाँ जा रही हो? बोले देवी की पूजा करने जा रही। बोले यहाँ देवी है, ये वन में बहुत सुंदर देवी है, वहां पर उसकी पूजा कर लो। तो जाके राधा रानी भी भोली भाली है, सब जगह ढूंढ लेते, कोई देवी नहीं मिलती उनको। तो कहाँ देवी है? बोले यही तो है, मैं अभी तो दर्शन करके आ रहा हूँ। फिर जाते, फिर ढूंढ के आती है, फिर कृष्ण मिलते हैं। बोले कहाँ हो गया पूजा देवी का? बोला नहीं कोई देवी भी कुछ नहीं यहाँ पर। जाओ तिबारा तीसरी बार जाओ, अभी बोल रहा हूँ मैं आपको, अभी दर्शन करके आ रहा हूँ, जाओ देखो। तो सब जगह ढूंढा उसने, कहीं मिले नहीं है। लेकिन अचानक तीसरी बार जाते तो उनको देवी मिल जाती है, तो बड़ी खुश हो जाती है। तुरंत वस्तु निकालती है, आरती पूजा करने लगती है। और आरती पूजा करते 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 बहुत मग्न होकर पूजा कर रही है, अचानक देवी आंख मीच देती है, ब्लिंक्स। अरे देवी ने आंख मीच कैसे कर दिया? तो समझ जाते अरे ये तो कृष्ण है, ये देवी बने हुए हैं। तो बड़ा उनको आनंद हो जाता है कि देवी कृष्ण ने कैसे हमको आनंद दिया है देवी बन के। तो उनकी आंखों से अश्रु आते हैं, कृष्ण के भी आते हैं देवी के रूप में और राधा रानी के रूप आंखों से आते आते। तो वहां पर एक कुंड बना है, विवल कुंड, जो नंदगांव के रास्ते पर है। वो केवल अचंभे से उत्पन्न हुए जो अश्रु हैं उनसे वो बना हुआ है, वो विवल कुंड है। तो इस तरह से यहाँ पर सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक और सुंदर लीला बताता हूँ, टाइम समय हो रहा है, कि यहाँ पर जब उनका जन्म हुआ और जन्म के बाद में यहाँ पर आए, तो उनका एक पहला मिलन स्थली है जहाँ पर वो पहले उनको मिला था। राधा रानी छोटी सी थी और अपने सखियों के साथ में लुका छुपी खेल रहे थे लोग, ललिता देवी, विशाखा देवी, इंदुलेखा, चित्रा सखी, हाँ तुंगविद्या, सुदेवी, रंग देवी, सब लोग मिलकर यहाँ पर लुका छुपी खेल रहे थे। तो कोई गोपी के ऊपर राज था, मतलब उसको ढूंढना था। सब गोपियाँ छुपने को जाती हैं आवाज देने के बाद में, तो राधा रानी एक कुंज में जाके छुप जाती है। और उस कुंज में वहां से श्याम सुंदर जाते हैं और वो पहली बार उसको देखते हैं। और जैसे ही देखते हैं तो उनके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ जाता है और कृष्ण जो है वो देख एकदम व्याकुल हो जाते हैं, प्रेम से एकदम विवल हो जाते हैं। और राधा रानी वहां छुपने को आई है, थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है, थोड़ा सांवला सा वातावरण है और वो सांवले से थे उसके अंदर। तो देखते हैं कोई बालक जो है बड़ा व्याकुल हो रहा है हमको देखकर, प्रेम से एकदम उसके हृदय में प्रेम का ऐसे लहरें उठ रही है। लेकिन बीच में ही आवाज आती है और वो देखते देखते बालक जो है वो बेहोश हो जाता है, मतलब श्याम सुंदर जी। तो इनकी बड़ी करुणा आती है, अरे बेहोश हो गया कुछ करना चाहिए। तो इतने में आवाज आती है, आ जाओ राधा रानी विश्वभानु नंदिनी, आ जाओ पकड़ लिया किसी को, पकड़ लिया, अभी दूसरा गेम खेलना है। तो वो निकलने का दिल नहीं हो रहा है उसका, लेकिन फिर भी सखियां बुला रही तो वहां पर ज्यादा रुक नहीं सकती है, तो चले जाती है। लेकिन बड़ी व्याकुल होकर चलती है वहां से, और वहां पर बेहोश श्याम सुंदर जी पड़े हैं। उनका मन में विचार चल रहा है, कौन था वो बालक सामने रंग का, बहुत सुंदर मोरपंख धारण किया हुआ, इतना आकर्षक था वो, पता नहीं कैसे मैं कुछ नहीं कर पाई उसके लिए। तो घर पे आती है तो उस दिन से खाना ही नहीं खाती, ना दूध पी रही, ना खाना खा रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो मैया बोल रही है, क्या हो रहा है इसको बताओ, ललिता जी देखो जरा, ललिता देवी, विशाखा देवी देखो, क्या सखी को क्या हो रहा है, ना दूध खा पी रही है, ना माखन खा रही है, बड़ी व्याकुल है, कई दिन से जग रही है, ना सो रही है, ना बात कर रही है, ना खेलने जा रही है, ना दूध निकालने जा रही है, ना कुछ करने जा रही है, कोई सेवा कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, पता नहीं क्या परेशानी है। तो ललिता देवी उसको मिलने को आती है और किसी को बोलती नहीं है वो, ललिता देवी अकेले में मिलती है। बता तू राधा रानी, बताओ क्या बात है? तो पूरा प्रसंग वर्णन करती है वो, कि हम जब खेल रहे थे वो दिन, तो वो कुंज में मैं छुपने गई थी, तो एक सांवला सा बालक था, तो ये पूछती बताओ बताओ क्या है। सांवला सा बालक था, उसके हाथ में मुरली थी, उसके सर पे मोरपंख था और पीताम्बर पहना हुआ था। बहुत सुंदर वर्णन करती है वो, मुझे देखकर बेहोश हो गया वहां पर और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे बहुत दुखी हूँ, पता नहीं कौन था वो बालक, कहाँ से आया था। तो वो पूरा वर्णन सुन लेती है, कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इस बालक को ढूंढ के निकालती हूँ। और वो नंदगांव जाती है, नंदगांव जाती है, उनका एक कुंड है वहां पर, ललिता कुंड नंदगांव में, वो ऐसा बरसाने का एम्बेसी है वो नंदगांव में। हाँ वहां पर जाके देखते हैं क्या चल रहा है, सबकी खबर लेते हैं, बाद में राधा रानी को बताते हैं। ललिता जी का अपनी जगह है वहां पर, एक कुंड है, ललिता का झूला भी है वहां पर। तो वहां जाती है तो वहां पर भी एक खबर फैली हुई है सब जगह पर कि श्याम सुंदर जी बहुत मुरझाए हुए हैं, कई दिन से ना माखन खा रहे, ना हंस रहे, ना बोल रहे, ना खेल रहे, ना कुछ कर रहे हैं, बस कमरे में पड़े हुए रो रहे हैं बस। तो खबर उनको मिलती है तो भी बड़ा वो बहाना बना के नंद महल में पहुंचती है और यशोदा मैया से बात करती है कि हमने सुना है कि आपके घर में बालक कोई बहुत दुखी है, हाँ हमारे श्याम सुंदर जी बहुत दुखी हैं। बोले मैं कुछ कर सकती हूँ उनके लिए? हाँ हाँ जो मैं तो परेशान हूँ, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, आप भी कोशिश कर लो। तो कहाँ पर है वो? बोले महल में सो रहे हैं, जाके मिलते हैं। बोलते श्याम सुंदर को देखते हैं, वो भी बड़ी मोहित हो जाती है उनको देख कर, और पूछते हैं बताओ क्या बात क्या है। फिर वही प्रसंग वो बताते हैं कि मैं उधर कुंज में गया था और अचानक एक सुंदर बालिका वहां पर आई, गोरी सी सा, बहुत श्रृंगार किया हुआ था, बड़ी उसको देखकर मैं व्याकुल हो गया, बेहोश हो गया, पता नहीं बाद में कहाँ गई। उसकी याद में मुझे ना माखन अच्छा लग रहा है ना भोजन अच्छा लग रहा है, मैं तो जान ही छोड़ दूंगा अभी, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे उसके मिला दो। तो राधा रानी कहती है, ललिता जी कहते कि हम आपको मिला देंगे, चिंता मत करना आप। तो फिर जैसे ही ठाकुर जी हंसते हैं, यशोदा मैं खुश हो जाते, करे मतलब ये प्राइवेट बात हो रही है, लेकिन बाद में वो अंदर आते देखते कि ठाकुर जी खिले हुए हैं। कोई बात नहीं, बोले हमें हम इनको ले जाएंगे, हमारे कुंड में स्नान वान कराएंगे, थोड़ा सा दवा ववा करेंगे, उनको ठीक कर देंगे उनको। ललिता जी बहुत कुशल है, बहुत कुशल बात करने में। अभी जिस व्यक्ति ने अंदर आके मुरझाए बालक को हंसा दिया, मतलब उसमें कोई शक्ति तो होगी ना, तो विश्वास रखना ही चाहिए ना, कुछ रिजल्ट तो दिया है उसने। बोले जाओ 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 ले जाओ, जो अच्छा करके भेज दो उसको। तो अपने कुंड में ले जाती है, अपने कुंड में स्नान कराती है ललिता देवी, और सब सखियों को बुलाती है वहां पर, और उनको बढ़िया सा दूल्हा बना देती है, सॉरी सॉरी सखी बनाती है, सखी अच्छी तरह सखी बना देती है, सब श्रृंगार करके बढ़िया से कहते हैं हम आपको मिलाएंगे, और उनको वहां से लेके जाके चल के सीधे राधा रानी के महल में लेके आते हैं उनको, और वहां पर उनका मिलन करा देते हैं। और मैया से बोलते हैं कि कोई नई सखी आई है, बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेम करती है वो मैं श्री जी से उनको मिलाना चाहती हूँ। तो अंदर जाके फिर उनका मिलन होता है, वो पहला मिलन है उनका, पहला मिलन तो वो है जहां पर वो बेहोश हुए थे, दूसरा मिलन और एक सली है वहां पर गोपाल मंदिर की, वहां पर भी उनकी मुलाकात हुई थी, वहां पर वो बोट लीला करते हैं। ऐसे बहुत बहुत लीला स्थली यहाँ पर, अनंत लीलाएं हैं सब जगह पर। हाँ यहाँ पर मान लीला भी आपको मैंने एक बताई, लेकिन कई ऐसे अलग अलग प्रसंग है जहां पर राधा रानी मान करती है, फिर अलग अलग प्रकार से उनको रिझाया जाता है, कोई गाते हैं, कोई नृत्य करते हैं, ठाकुर जी सब कुछ करते हैं। और यहाँ पर एक चित्रपट है मंदिर के नीचे अंदर, कि राधा रानी ऐसी नाराज बैठी हुई है और सखी कृष्ण का हाथ लेकर उनका हाथ में मिलाना चाहती है, लेकिन वो वहां देख रही है, सब सखियां भी व्याकुल है, कृष्ण भी व्याकुल है, सब लोग परेशान है कि राधा रानी का गुस्सा आया हुआ है। तो ये मान लीला है, हमको यहाँ से क्या सीखना चाहिए कि हमको अपने लिए मान करना भूल जाना चाहिए, अपने लिए क्रोध करना, अपनी प्राप्ति नहीं हुई, कुछ हमको चाहिए थी वो नहीं मिला तो क्रोध नहीं करना चाहिए। कृष्ण की प्राप्ति के लिए क्या हो उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, राधा रानी के आनंद के लिए प्रयास करना चाहिए। ये तो बड़ी उत्कट लीला है, हम जिसके सहभागी होने के योग्य भी नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि हम अयोग्य हैं, लेकिन फिर भी आपकी कृपा बने तो हम भी ठाकुर जी को थोड़ा बहुत प्रेम कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अभी आप जब उतरना आरंभ करेंगे तो उस तरफ आपको एक कुंड दिखाई पड़ेगा, मैं आपको आके दिखाऊंगा, एक दो चार लोगों को दिखाऊंगा, फिर आप बस बाकी लोगों को दिखाते रहना। वो है दोहनी कुंड, बड़ा विशाल कुंड है, वो भी जल में उसमें बहुत कम हो गया जल उसका, बहुत विशाल था बहुत वो, वहां पर वो दोने वाले कदम के वृक्ष हुआ करते थे पुराने जमाने में। वो दोहनी कुंड है जहां पर विश्वानु महाराज की गैया का दूध निकालते थे, और बिहार कुंड यहां से नजर नहीं आता है, लेकिन वो उसके बाजू में है बिहार कुंड, दर्शन कर लीजिए और यहाँ का वातावरण का आनंद लीजिए। देखिए यहाँ पर सखी गिरी है, यहाँ पर ललिता सखी के गांव में कृष्ण भगवान जाते हैं तो ललिता पर इतना प्रेम करते हैं कि वो ललिता के बछड़े को पकड़कर उसका दूध निकालकर उनको देते हैं, गाय का दूध निकालकर, हाँ खुद सेवा करते हैं ललिता देवी की। ललिता देवी के चरण चिन्ह है वहां पर, और राधा रानी वहां पर भी क्रोध करके बैठी हुई है, वहां पर भी ऐसा स्थान है जहां पर राधा रानी जो है पूरे हाथ में मेहंदी रचाकर मिलने के लिए सच धजती हैं, और कुछ बात बिगड़ जाती है तो गुस्सा आता है उनको, तो वो आप देखें लड़कियां जब नाराज होती है तो ऐसे पत्थर में हाथ घिसते हैं ऐसे क्रोध में, है ना, आपको पता है सब कुछ ना, मतलब तो वो मेहंदी लगाए हाथ को, मेहंदी निकालने के लिए ऐसे पत्थर पे हाथ घिसती है, मेहंदी निकालती है, नहीं मिलेंगे आपसे, तो जिस पत्थर पर उन्होंने हाथ ऐसा घिसाया है वो उनके हस्त स्पर्श से पत्थर भी पिघल जाता है प्रेम की भावना से, तो वो मेहंदी के निशान है उसके ऊपर, ऐसे पत्थर वहां पर है, झूला भी है वहां पर जहाँ राधा रानी सॉरी ललिता और कृष्ण भगवान झूलते हैं, और वहां पर ऐसे एक फिसलन पहाड़ी भी है जहां पर सखा लोग जो है घसरगुंडी करते हैं, वो भी उस पहाड़ पर है, बड़ा विचित्र सुंदर पहाड़ है ये जहाँ पर सखियां राधा कृष्ण जो है बैठकर मिलन लीला होती है यहाँ पर उनकी। आप यहीं से दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो ललिता देवी को, ललिता देवी भगवान की बड़ी प्रिय सखी है, और जब भगवान को कुछ मिलने को देर होती है राधा रानी को, तो उस भाव में वो राधा रानी को बहुत सहायता करती है। ललिता देवी की जय हो। श्री राधा मान बिहारी लाल की, मानगढ़ धाम की, श्री बरसाना धाम की जय। जय श्री राधे श्याम।